दिन भर 20 मार्च रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। भारतीय जनता पार्टी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को चोली दामन का साथ बताया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन जो फ्री स्पीच है उसमें और राष्ट्रवाद की विचारधारा को एग्जिस्ट करती है, कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है।
करेंगे विश्लेषण, क्यों भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इतना जोर दे रही है। उत्तराखंड में सियासी उठापटक जारी, जानेंगे राज्य के ताजा सियासी हालात। और संडे दिन भर में मिलिए पाकिस्तान के सियासतदान और इस्लामी धर्म गुरु ताहिरुल कादरी से।
इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मुश्तरका दुश्मन है दहशतगर्द, आतंकवादी और दहशतगर्दी दोनों तरफ इंतहा पसंद।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में है, लेकिन राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की विचारधारा दोनों एक साथ अस्तित्व में रहती है। संविधान हमें देश के विरोध की आज़ादी नहीं देता, वह हमें असहमति जताने का अधिकार देता है। स्पेन में विदेशी छात्रों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हादसा रविवार सुबह वेलेंसिया और बार्सिलोना के बीच मोटरवे पर हुआ। इस बस में 57 लोग सवार थे, जो वेलेंसिया में स्प्रिंग बॉनफायर फेस्टिवल मनाकर वापस लौट रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बस सड़क किनारे लगे बैरियर से टकरा गई, जिससे ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा। ड्राइवर इस हादसे में बच गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। शनिवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हुए विस्फोट के लिए सरकार ने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। इस विस्फोट में 4 लोग मारे गए थे और करीब 20 लोग घायल हुए थे। इस्तिकलाल स्ट्रीट, जहां यह धमाका हुआ, वहां शनिवार और रविवार को काफ़ी भीड़ रहती है। इस हमले पर गृह मंत्री इफकान आला ने कहा,
मेनफुर इंतार साल्दरसन गैरचेक्लेश्तरन टेररिस्टिन किमली तस्पित एदिलमिश्ती।
इस हमले में खुद को उड़ाने वाले आत्मघाती हमलावर की पहचान मेहमत ओस्टक के रूप में हुई है, जिसका जन्म तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत गाजनटाप में 1992 में हुआ था। इस हमले में हर संभावित कड़ी की सघनता से जांच की जा रही है। मुझे बताया गया है कि हमले से पहले वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी जाँच नहीं की थी। फिलहाल अभी तक इस हमले के संदर्भ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जाँच चल रही है। तुर्की के गृह मंत्री इफकान आला के शब्द, पिछले रविवार को राजधानी अंकारा में हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई थी। कुर्द चरमपंथी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उनका कहना था कि कुर्द समुदाय पर तुर्की सेना की कार्रवाई के बदले में उन्होंने ये हमला किया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पकड़े गए रवांडा में नरसंहार के संदिग्ध लडिस्लास तगवांजा को रवांडा प्रत्यर्पित कर दिया गया है। वहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तगवांजा पर वर्ष 1994 में तुत्से समुदाय की हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनकी हत्या करने का आरोप है। उन्हें पिछले साल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पकड़ा गया था। अमरीका ने उन पर $50 लाख का इनाम रखा था और उनके अनुसार तगवांजा इस हिंसा में मुख्य भूमिका में थे। महाराष्ट्र में सूखे की मार और इसकी वजह से पानी की किल्लत झेल रहे लातूर शहर में प्रशासन ने पानी को लेकर संघर्ष रोकने के लिए जल स्रोतों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के तहत 4 या 4 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। लातूर शहर में स्थित 6 वाटर टैंक्स और शहर को पानी की सप्लाई करने वाले तालाब, कुएं और अन्य जल स्रोतों के आसपास ये पाबंदी लगाई गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि संविधान असहमति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों की आजादी नहीं देता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन जो फ्री स्पीच है उसमें और राष्ट्रवाद की विचारधारा को एग्जिस्ट करती है, कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है। समाज में डिसेंट का अधिकार हो, डिसएग्रीमेंट का अधिकार हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन इस देश का संविधान डिसेंट की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, देश के डिस्ट्रक्शन की स्वतंत्रता नहीं देता। और इसलिए फ्री स्पीच एंड नेशनलिज्म डू नेसेसरली कोएग्जिस्ट।
जाहिर है यहाँ इशारा उस विवाद की ओर था जिसकी शुरुआत दिल्ली के जेएनयू से हुई थी। अरुण जेटली ने जहाँ एक ओर राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की आज़ादी को चोली दामन का साथ बताया, वहीं कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों पर दिशाहीन होने का आरोप भी लगाया।
देश में एक दौर था जिसमें सरकार बिना किसी दिशा के चल रही थी और उसके विकल्प के रूप में एक डिसाइसिव लीडरशिप वाली सरकार आई।
आरोप लगा तो आरोप का जवाब भी आना था। इसके जवाब में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छे दिन के वादे की याद दिलाई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा,
देखिए वित्त मंत्री जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही दिशा विहीन सरकार है। उसका कारण ये है कि जो इन्होंने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे लोगों को, अब लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। उसका कारण ये है कि जो 15 लाख रुपए इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे काला धन वापस लाके विदेशी बैंकों से, वो 15 लाख रुपए का क्या हुआ? आज खाद्यान्न की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके साथ साथ जिस तरह से इस मुल्क में असहनशीलता का माहौल बनाया है, हैदराबाद से लेके पुणे तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को उसमें शामिल करते हुए जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शायद आजाद हिंदुस्तान में उसकी कोई मिसाल नहीं है।
ये थे कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी आजकल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहुत बहुत अधिक जोर देती नजर आती है। क्या वजह है इसकी? राम मंदिर, उग्र हिंदुत्व, अनुच्छेद 370, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहुत जोर दे रही है। इसकी वजह समझने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्निस से।
अरुण जी जो कि पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको ये लग रहा है कि राष्ट्रवाद को लेके भाजपा में अगर जमीन है तो भाजपा को उसको घेरना चाहिए। एक तरह से ये राष्ट्रवाद का जो नारा अब लग रहा है, भाजपा पहले भी लगा चुकी है ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो लग रहा है वो पूर्ण रूप से जो 5 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनकी तरफ केंद्रित है। कम से कम 2 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में और केरल में, बीजेपी अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है, वहां पर उसका कुछ है नहीं। वो चाहती है कि वो ऐसे लोगों को लाए जो कि उसकी मदद करे, और ये तभी हो सकता है जब पूरी तरह से लेफ्ट पार्टीज का, वामपंथी पार्टियों का सफाया हो। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वामपंथी पार्टियों के रोल पर एक तरह से पहले भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। तो वो चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा डिबेट राष्ट्रवाद के मामले पर जाए ताकि वामपंथी पार्टियों को उसी तरह से जवाब देना पड़े।
पिछले दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी राष्ट्रवाद को अपने तरह से डिफाइन करने की, परिभाषित करने की कोशिश की है और अपने राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से अलग बताने की कोशिश की है। आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस को भी समझ में आने लगा है कि ये मुद्दा थोड़ा सा उसको भी चुनाव में फायदा दिला सकता है, जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, इस शब्द को भुनाने की कोशिश कर रही है?
निश्चित रूप से बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रवाद एक किसी धर्म या किसी पार्टी या किसी कम्युनिटी पर केंद्रित नहीं है। राष्ट्रवाद उन लोगों की एक आइडियोलॉजी है जो कि भारत को अपना राष्ट्र मानते हैं। और कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, हम आपसे सहमत नहीं है, राष्ट्रवाद सबका अधिकार है जो भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं। तो अब बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं हमारे देश में, धन के आधार पर भी और एक तरह से हिंदूवादी अपने आप को नहीं मानती हैं, उनका राष्ट्रवाद, उनके राष्ट्रवाद पर अगर आप आक्षेप करेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा राष्ट्रवाद क्या है, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे उससे। तो कांग्रेस ही कह रही है कि उन कम्युनिटीज को जो कि बीजेपी का राष्ट्रवाद नहीं मानते, हमारा राष्ट्रवाद माने।
राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रवाद की नाव पर सवार होकर कितनी दूर जा पाएंगे?
ये बहुत ज्यादा दूर जाएगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद आप कैसे इसकी पुष्टि करेंगे? अगर आप झंडा फहराएंगे अपने घर से तो आप राष्ट्रवादी हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं, हमको ये सब जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि तुम कितनी बार हमसे पूछोगे कि हम झंडा फहराएं और अपना राष्ट्रवाद सिद्ध करें। एक सतही तौर पर राष्ट्रवाद क्या है और उसकी कैसे अभिव्यक्ति की जाए और किन टर्म्स में उसको डिफाइन किया जाए, उसको परिभाषित किया जाए, ये सब एक तरह से बहुत ही सतही है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा दूर जाएगा नहीं।
क्यों भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इतना जोर दे रही है, विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्निस। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एनकाउंटर बताया है। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस भेज दिया है और उनसे 26 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले में बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही हैं। देहरादून से दिल्ली तक दोनों दलों ने बिछात, एक तरह से बिसात बिछा दी है। तो बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के बागी गुड़गांव के होटल में डटे हैं और कांग्रेस ने भी कोई जोखिम मोल न लेते हुए अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर भिजवा दिया है। सुनिए देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ गई है। अगले 8 रोज तक सियासी तापमान कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छुड़ाता रहेगा। विधानसभा में पक्ष विपक्ष का संख्याबल बहुत करीब का है, लिहाजा टक्कर भी कांटे की रहने वाली है। बीजेपी जहां 36 के आंकड़े के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। इस बीच पार्टी के बागी 9 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नोटिस भेज दिया है।
नोटिस भेजा है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो 26 तारीख को 5 बजे के अंदर अपना जवाब हमें प्रस्तुत कर दें या स्वयं मिल करके मेरे पास आकर के मुझसे अपनी बात बता दें।
लेकिन बागी नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो अभी भी कांग्रेस में ही हैं। सदन के भीतर 2 रोज पहले जो हुआ उस समय विधानसभा स्पीकर तो अपनी सीट से उठ गए थे, फिर उनके नोटिस का क्या अर्थ? सुनिए हरक सिंह रावत को।
विधानसभा अध्यक्ष उठ के चले गए, उसके बाद कोई कुछ भी करे वो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। वो प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार होता है, वो राष्ट्र अध्यक्ष का अधिकार है कि पार्टी हमको निष्कासित कर दे।
इस राजनीतिक तमाशे के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो विरोधी दलों की सरकारों को रास्ते से हटाने पर तुली है। रावत के मुताबिक मोदी सरकार एक तरह से एनकाउंटर कर रही है।
पूरी तरीके से जो उनकी केंद्र सरकार है उसके बलबूते पर राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने पर तुली हुई है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और एक एक करके चुन चुन करके विरोध पक्ष की सरकारों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक प्रकार का इनकाउंटर है। अब पहले हॉर्स घोड़े की टांग तोड़ी, अब हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है उत्तराखंड की टांग तोड़ना चाह रहे हैं।
यूं तो कांग्रेस के बागी विधायक अभी भी हरीश रावत के खिलाफ मोर्चे पर डटे हैं और हर हाल में उनकी विदाई चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान उनमें से कुछ विधायकों के लौट आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने भी अपनी बिसात बिछा रखी है। इसी डर से सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने भी एहतियातन अपने सभी विधायकों को हल्द्वानी के पास रामनगर के एक होटल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। सबकी निगाहें 28 मार्च पर टिकी हैं, जिस दिन हरीश रावत सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
वो अपने देवताओं के लिए रोते हैं।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा, भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस बाबे के लिए।
वो अपनी बिखरी धरोहर को सहेजना चाहते हैं।
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था, फिर हमने हमारी संस्था ने हमारी
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई।
भाई देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा, भूल कर भी हथियार मत उठाना, क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है। मेरे बच्चों, हमने इस जहर को पिया हुआ है।
इनका भी कश्मीर। कश्मीर से लौटकर जुबैर अहमद की विशेष रिपोर्टें सोमवार 21 मार्च से रोजाना शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
बीस मार्च दिन रविवार दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ और अब वक्त हो चला है संडे दिन भर का। संडे दिन भर में आज मिलिए पाकिस्तानी सियासतदान और इस्लामी धर्मगुरु ताहिरुल कादरी से, उनसे बात कर रहे हैं विनीत खरे।
टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बना, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, दोनों देशों के जो मुसलमान हैं उनके बीच में आप क्या फ़र्क देखते हैं?
अरे बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने और न किसी ने ये बात मुझसे आज तक पूछी और न मैंने इस एंगल से कोई बतौर ख़ास इसको गहराई में देखा। पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों को तो खैर हर वक्त देखता ही रहता हूँ, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं इनको भी मैंने मुसलमानी में अपने दीन पर अमल में उसके जज्बे में मोहब्बत में अब यकीन जानिए कम नहीं पाया, ज़्यादा ही पाया होगा। उनके अंदर भी बड़ा जज्बा है और दो चीज़ें देखी हैं, यानी यहाँ के मुसलमान रहने वाले जहाँ दीन से अपने इस्लाम से रूहानियत के साथ औलिया के साथ अच्छी रूहानी दीनी कदरों के साथ मोहब्बत करते हैं और ये खूबियाँ भी बेपनाह हैं, वालेहाना मोहब्बत करते हैं, और एट द सेम टाइम मैंने देखा कि वो अपने वतन से अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, ये खूबी की बात है।
पर बढ़ते अरबिक इन्फ्लुएंस की, क्योंकि जो साउथ एशिया में मुसलमान रहते हैं उनका अपना एक कल्चर रहा है, जैसे कि खुदा हाफिज़ कई लोग यहाँ पहले बोलते थे, अब अल्लाह हाफिज़, इस पर आप क्या कहेंगे?
मेरी स्टडी डिफरेंट है, इस पर मेरी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ है। ये जो खुदा हाफिज़ को बैन किया और अल्लाह हाफिज़ की तरफ आए हैं, पहली बात तो ये कि इस तब्दीली में बुराई कोई नहीं, एक बात ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये जो चेंज है इस चेंज की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी। मैं इसके पीछे कुछ और चीज़ देखता हूँ, ये अरबिक इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुआ। कुछ बाज़ ममालिक के माबैन कुछ मुसलमानों के अंदर कुछ मसलकी और एतिकादी कुछ फ़र्क और कुछ फासले होते हैं, तो खुदा का लफ्ज़ जो है वो पर्शियन लफ्ज़ है, फ़ारसी का लफ्ज़ है, तो बाज़ लोगों ने इस पर कई सालों तक कोशिश की है, मुहिम चलाई है कि खुदा चूँकि पर्शियन लफ्ज़ है यानी ईरानियन ओरिजिन का लफ्ज़ है तो इसको रिप्लेस करके अल्लाह हाफिज़ की तरफ किया जाए। खुदा से मुराद भी वही हस्ती है, अल्लाह से मुराद भी वही हस्ती है, लेकिन मैंने तो जो स्टडी किया है जब से ये अल्फाज में चेंज आया, मैं इसको वाच करता रहा हूँ, तो मेरे पेश नज़र ये कुछ और एंगल है, इसको मैं बराह रास्त अरबिक इन्फ्लुएंस के इशू के तहत नहीं देखता। ऑफ कोर्स अल्लाह का लफ्ज़ अरबिक ओरिजिन का है, मगर मैंने इसको और पस मंज़र में देखा है ये बयान
की। कई लोगों की चिंता ये है कि सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा इस इलाके में आ रहा है और पाकिस्तान में शायद ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग साउथ एशिया का कम और अपने आप को मिडल ईस्ट या सऊदी अरब के नज़दीक ज़्यादा सोच कर देखते हैं, इस पर क्या सोच होगी आपकी? क्योंकि साउथ एशियन मुस्लिम एक बहुत पुराना इस्लामिक कल्चर है।
ये एक बदकिस्मती है कि कंट्रीज़ को जब ये बजट दूसरे मुल्कों से आते हैं ना, बाहर के मुल्कों से, खा किसी भी नाम पर, तो उनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए कि कौन बजट भेज रहा है, रिसिपियंट कौन है, किन को भेज रहा है, कौन ले रहे हैं, किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। ये बदकिस्मती है कि इसके ऊपर कोई कवानीन साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक मिल के नहीं बना सके या इनकी प्रॉपर रोकथाम के लिए। इससे सिर्फ कल्चरल चेंज ही नहीं आ रही बल्कि इसके साथ सेक्टेरियन इश्यूज भी पैदा हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में, आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी आई हैं, सेक्टेरियन इश्यूज भी पैदा हुए हैं, नफ़रतें और हेट्रेड्स, सेक्टेरियन हेट्रेड्स भी बड़ी हैं, और इंतहा पसंदी के रुझानात में भी कहीं ना कहीं इस किस्म के पैसे का काफ़ी उसमें दखल हुआ है।
डॉक्टर कादरी, हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस्लाम को बहुत प्रॉब्लम्स के, बहुत इश्यूज़ का कारण मानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका खुद को कहता है कि हम विक्टिम हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। आप ये जो दोनों सोच है इसे कैसे देखते हैं आप?
میں تو اس طبقے سے اتفاق نہیں کرتا جو اسلام کو ان پرابلمز کا ریزن سمجھتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اب رہ گیا سوال کا دوسرا حصہ کہ مسلمان اس خطے کے کہتے ہیں کہ ہم خود اس سے سفر کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان سفر کر رہا ہے، عراق سفر کر رہا ہے، سیریا سفر کر رہا ہے، ایجپٹ سفر کر چکا ہے، یمن سفر کر رہا ہے، اور کئی اور ممالک ہیں مسلمان سفر بھی کر رہے ہیں، اور سفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ممالک نے مؤثر کارروائی نہیں کی، مؤثر پالیسیز نہیں بنائی۔ دہشت گردی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں نہیں بن جاتی۔
صوفی اسلام کا بھوشیہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرز ہیں صوفی سینٹرز، وہاں پر حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، آگے کا پھر بھوشیہ کیا ہے جب آپ صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں؟
دیکھیے جی، دہشت گرد جو ہے نا وہ تو امن کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے اس وقت تک جب تک دہشت گردی کا اٹسیلف خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ چلتے رہیں گے۔ جب دہشت گردی کو حکومتیں پاکستان اور انڈیا کو، خاص طور پہ چلو باہر دور کی بات کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ ان دو ملکوں کو تو ایک جوائنٹ میکانزم وضع کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے دہشت گرد، اور دہشت گردی دونوں طرف، انتہا پسندی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، دونوں طرف امن سکون اور آشتی کو آگ لگ رہی ہے، دونوں طرف پریشان ہیں، کم سے کم یہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور دہشت گردی کے ایشو کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے اپنے دکھ شکوے بھی بیان کریں، اختلافات بھی بیان کریں، ایک دوسرے پر الزامات اور جو وہ سب بیان کریں، ان کا رائٹ ہے، ثبوت بھی دیں، مگر اس طرح بیٹھے جیسے دو بھائی بیٹھتے ہیں، جو دوست بیٹھتے ہیں، یہ فیصلہ کر کے کہ اس عداوت کو، دشمنی کو ختم کرنا ہے۔ 70 برس ہو گئے تقسیم ہند کو، دونوں ملک ایگزسٹ کرتے ہیں، اب 70 برس تو ہوسٹیلیٹی میں گزرے، دشمنی میں، تو کیا ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک یہ دشمنی چلے گی؟ کوئی دن ایسا بھی لانا چاہتے ہیں جس دن دشمنی ختم ہو جائے، بھاڑ میں جائے، دشمنی ختم کریں، اس کو کنورٹ کریں دوستی میں؟
تو آپ ایسے وقت ہندوستان آئے جب یہاں پر انٹالرنس یا اینٹی نیشنل کو لے کر کافی تیکھی بحث چل رہی ہے، اس پر آپ کی کیا سوچ ہے؟
دیکھیے، میں وہ مجھے اس کی اطلاع ہے، میں اس پر کمنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن بہر صورت یہ ایشوز کنٹریز میں کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میں رائٹ نہیں سمجھتا اپنا کہ میں کہوں کہ فلاں صحیح نیشنل ہے اور فلاں نیشنل نہیں ہے، اور میں اگر کہوں تو میں سمجھ ان فیئر ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے بھائی، ہر دور میں یہ اونچ نیچ معاملات کی ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ میں لوگوں کے اندر انتہا پسندانہ رجحانات بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوئے، سارے لوگوں کو مل کر ایک، یہاں ود ان انڈیا بھی، میں جب پاکستان اور انڈیا کو جوائنٹ اسٹریٹجی اپنانے کی بات کر رہا تھا تو کنٹری کے اندر بھی، ود ان انڈیا بھی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مل کر بیٹھ کے، پولیٹکس سے ہٹ کر مل کے بیٹھ کے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اور جوائنٹ ایکشن پلان اور ایک جوائنٹ ویژن ہونا چاہیے۔
ایک کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد آپ پاکستان سے اس سے غائب ہو گئے ہیں، مطلب کہاں ہیں؟ جن چیزوں کی بات آپ نے کہی تھی وہ تو ہوئی نہیں، بدلاؤ پاکستان میں نہیں آئے، عمران خان کے ساتھ جو الائنس تھا وہ، اس پر کوئی بات نہیں، وہ کہاں ہیں؟
ایک تو جو پہلے کسی نے اگر کہا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں وہ غلط ہے، میں تو ہر اس مردوں دو بار پاکستان ہو کے آیا ہوں، ابھی پورے رمضان المبارک میں ایک مہینہ کے قریب میں پاکستان میں تھا، اور ابھی پچھلے ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی کا مہینہ پاکستان میں تھا، اور لاکھوں کا اجتماع تھا، مینار پاکستان پر ایڈریس کیا، اور یہ غائب ہونا نہیں، میں پہلے بھی لانگ مارچ سے پہلے بھی میری رہائش پچھلے 10 سال سے
کہہ رہا ہوں،
ہم ایکٹیو ہیں، ہم ایکٹیو ہیں، ہماری اسٹرگل جاری ہے، اور ان کے خلاف ہماری قانونی جنگ بھی جاری ہے، کل ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے، کمپلینٹ، آج ہمارے استغاثے کے بیان ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ٹیلی فون کر کے حالات لے رہا تھا گورنمنٹ کے خلاف، ہماری وہ اسٹرگل بھی جاری ہے، قانونی جنگ بھی جاری ہے، اور ہماری پولیٹیکل اسٹرگل بھی جاری ہے۔ رہ گیا آپ نے جو عمران خان کی بات کی، ان کے ساتھ ہمارا الائنس کبھی بھی نہیں تھا، آپ کسی ایک دن بھی آپ نیوز کو دیکھیں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹھ کے ہم نے کبھی الائنس کا اعلان کیا ہو، میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں، اسٹرگل کریں، مگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ، ان کی مجبوریاں ہوں گی، वो पीटीआई की तरफ से हमारे साथ कभी अलायंस के लिए वो तैयार नहीं हुए।
कई लोग आपकी बात पे एग्री नहीं होंगे, ऐसा लगा था कि आप दोनों साथ में आ गए हैं,
नहीं, नहीं, कह रहे हैं कि अलायंस नहीं, अलायंस नहीं था
कभी। आप कनाडा में रहते हैं, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़्यादा जाते हैं, कई लोग सवाल पूछेंगे और इस पर भी काफ़ी बात लिखा जा चुका है कॉन्ट्रोवर्सी की, जिस तेज़ी से आप फैले हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, इस तरह के कई सवाल उठते रहे हैं, क्यों आपको कोई सीरियसली ले, या फिर आपकी बात जो है, क्योंकि आप, कई लोग कहेंगे कि आपका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे, आप पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, चार स्पीचेस देके वापस चले जाते हैं।
देखिए, मैं सिर्फ एक मुल्क के अंदर स्ट्रगल करने वाला आदमी नहीं हूँ कि जिसका बाहर कोई काम नहीं है। मैंने 30-35 साल के अंदर दुनिया के मोर देन 90 कंट्री में एक दुनिया, एक कायनात फैलाई है। मेरे अगर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली सारे वो भी लाहौर में रहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन लाहौर पाकिस्तान में है। अब ये कितनी नाइंसाफ़ी है कि 90 मुल्कों में फैलाकर मैं एक जगह बंद होकर बैठ जाऊं और बाकी 90 मुल्कों ने क्या कसूर किया। क्योंकि हमारी जितनी स्ट्रगल होती है वो वसाइल भी हमारी तंजीमात और हमारे मेंबर्स भेजते हैं। हमें दुनिया के किसी मुल्क से कोई फ़ंड आज तक नहीं आया, ये रिकॉर्ड पर बात ला रहा हूं। और मैंने ये बात हमेशा कही है, इस्लामाबाद में मैंने यहाँ तक कहा था कि आप कानून बनाएं जो लोग कहीं से फंडिंग लेते हैं उनकी सज़ा मौत कर दें, और सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, बनाए कानून।
डॉक्टर ताहिर अल कादरी, बीबीसी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तानी सियासतदान और इस्लामी धर्म गुरु ताहिर अल कादरी से विनीत खरे की इस बातचीत के बाद अब खेल की खबरें। T20 वर्ल्ड कप में आज कौन कौन सी टीमें कहां, क्या मुकाबला आमने सामने कौन है?
जी देखिए, 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले तो हैं ही, इसके अलावा दो और बड़ी खबरें हैं जिनकी वजह से भारत के लिए आज सुपर संडे है। कल भारत ने पाकिस्तान को हराकर सुपर सैटरडे बनाया था। अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो भारत के HS प्रणय ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल थोड़ी देर पहले अपने नाम किया, 13वीं वरीयता हासिल। HS प्रणय ने 7वीं वरीयता हासिल जर्मनी के मार्क ज्यूबलर को 21-18, 21-15 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। वहीं लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने चीन के काताई यिरलान बाइके को मात दी, और इसके साथ ही उन्होंने 65 किलो भार वर्ग के फ्रीस्टाइल मुकाबलों में रियो ओलंपिक के लिए भी अपना टिकट पक्का कर लिया है। और अगर अब क्रिकेट मुकाबलों की बात की जाए तो आज पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 37 रन से मात दी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भले ही 20 ओवर में 172 रनों पर सिमट गई, लेकिन सलामी जोड़ी मोहम्मद शहजाद ने 44 और नूर अली जरदार ने 25 रन बनाए, और इन्होंने पहले विकेट के लिए केवल 4 ओवर में 52 रन जोड़कर एक समय तो दक्षिण अफ्रीकी टीम के भी छक्के छोड़ा दिए थे। फिलहाल दूसरा मुकाबला श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है बेंगलोर में, जहां थोड़ी देर पहले श्रीलंका ने 5 ओवर के बाद 32 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। उधर महिला वर्ग के पहले मुकाबले में चेन्नई में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेशी टीम को 49 रन से मात दी। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते कप्तान स्टेफनी टेलर के 40 और हेले मैथ्यूज के 41 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 148 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 18.3 ओवर में 99 रनों पर सिमट गई।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद सुनते हैं कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में है, लेकिन राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्पेन में विदेशी छात्रों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बस में 57 लोग सवार थे जो वेलेंसिया में स्प्रिंग बॉनफायर फेस्टिवल मनाकर वापस लौट रहे थे। शनिवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में के एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर हुए विस्फोट के लिए सरकार ने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पकड़े गए रवांडा में नरसंहार के संदिग्ध लडिस्लास तगवांजा को रवांडा प्रत्यर्पित कर दिया गया है। तगवांजा पर वर्ष 1994 में तुत्सी समुदाय की हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनकी हत्या करने का आरोप है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे देवाशीष कुमार। ठीक 1.5 घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।